ఏసి భక్తి వేదాంత స్వామిల ప్రభుపాదకి ఇస్కాన్ డెప్యూటీ ఫౌండర్ ఆచార్య శ్రీల ప్రభుపాదకి శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద దేవ్కి శ్రీ శ్రీ సీతారామ లక్ష్మణ హనుమాన్కి శ్రీ శ్రీ పంచతత్వకి శ్రీ శ్రీ యశోద దామోదరకి తాయి గౌర ప్రేమానందే ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ స్వయం రూపాకలామయం దదాతి స్వపదాంతికం హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంతారాధాకాంతమనోస్తుతే గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి విశ్వపానోసుదేవి ప్రణమామి హరి ప్రియ పాంచాకల్పతరూపేశ కృపా సింధువేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్తవృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ. తో ఆజ్ కార్తీక కా ఆఖరి దిన హై ఔర్ दो महान उत्सव हैं. एक है श्रीमती तुलसी महारानी का विवाह और दूसरा है चार संप्रदाय के महान चार संप्रदायों में से एक जो श्री संप्रदाय है या कुमार संप्रदाय है उसके महत्वपूर्ण आचार्य श्रीपाद निम्बार्काचार्य का आज आविर्भाव है. आविर्भाव है और विश्व पंचम का आखिरी दिन है. तो आज हम चर्चा करेंगे विशेष रूप से श्रीमती तुलसी महारानी के बारे में. उससे पहले मैं श्रीपाद निम्बार्काचार्य के बारे में दो तीन मिनट बोलूंगा. तो हम जानते हैं कि भगवान सारे जीवों को अपने धाम में वापस आने के लिए एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं और उनका ट्रेनिंग एंड एजुकेशन कंप्लीट करवाते हैं. चार जो यूनिवर्सिटीज हैं, चार जो संप्रदाय हैं, चत्वारा संप्रदायना, बच्चों को बाहर ले जा सकते प्लीज. तो चार जो संप्रदाय हैं, उसमें भगवान जीवों को ट्रेन कराते हैं अपने प्रिय भक्तों की अध्यक्षता में और वो जो क्वालिफाइड हो जाता है भगवत धाम वापस जाने के लिए. तो ऐसा ही जो श्री संप्रदाय है उसके जो आचार्य हैं श्रीपाद निम्बार्काचार्य कुमार संप्रदाय के जो आचार्य हैं जिनका नाम है श्रीपाद निम्बार्काचार्य. तो जनरली ये चार संप्रदाय के जो आचार्य हैं उनका आविर्भाव दक्षिण भारत में हुआ था, इसलिए दक्षिण भारत को द्रविड़ देश या जहां भक्ति ने जन्म लिया उसको दक्षिण भारत कहते हैं. तो ऐसे दक्षिण भारत में निम्बार्काचार्य का आविर्भाव हुआ था. उनके माता पिता का नाम था अरुण मुनि और जयंती देवी आंध्र प्रदेश में. तो इनका जब जन्म हुआ उस समय इनका नाम नियमानंदाचार्य रखा था. क्या रखा था? नियमानंदाचार्य या अरुण ऋषि या हरि प्रियाचार्य उनको कहा जाता था निम्बार्काचार्य को. तो जब इनको गुरुकुल में भेजा माता पिता ने तो इतने एक्सपर्ट थे अध्ययन में कि कुछ ही दिनों में वो स्कॉलर बने. छोटे से आयु में अभी 10-12 साल की आयु में 10 साल की आयु में पूरे भारत से बड़े बड़े विद्वान निम्बार्काचार्यों को देखने के लिए मिलने के लिए उनसे बात करने के लिए आते थे दक्षिण भारत में, तो उस समय एक दिन जो ब्रह्मा जी है उन्होंने सोचा मैं भी ऐसे आचार्य को मिलना चाहता हूँ, ऐसे व्यक्ति को मिलना चाहता हूँ कि जिसका हृदय भगवत प्रेम से सरोवर या भरा हुआ है। तो ये जो ब्रह्मा ने सोचा मैं अपने चार मुखों के साथ आऊंगा तो मुझे पहचान लेंगे, तो उन्होंने एक सन्यासी का वेश धारण कर दिया है निम्बार्कचार्य, जो ब्रह्मा जी है निम्बार्कचार्य का जो गांव है वहां नीम ग्राम उसे कहते हैं, तो वहां आए हैं। तो उस समय निम्बार्कचार्य की या नियमाचार्य के जो पिताजी हैं वो तो बाहर चले गए थे, केवल उनकी माँ घर में थी। तो ब्रह्मा जी साधु के वेश में आते हैं, सन्यासी के वेश में आते हैं और उनसे भिक्षा मांगते हैं। तो शाम का समय हुआ था और ये दोनों ही माता और ये पुत्र ये दोनों ही थे घर में, तो उनकी माँ ने इस बेटे को कहा कि अरे घर में कुछ भी नहीं है और तो हम कुछ इनको दे नहीं सकते और सूर्यास्त हो रहा है, क्योंकि जो सन्यासी है वो सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं ग्रहण करते, ये वैदिक सभ्यता है। तो लेकिन इन्होंने कहा, निम्बार्कचार्य ने कहा कि ये उचित नहीं है, अतिथि देवो भव, अतिथि हमारे घर आता है तो उनको हमें खिलाकर पिलाकर वो सब करके उनको भेजना चाहिए। तो ये तुरंत उनकी सन्यासी के पास गए और कहा कि बस आपको क्षणों के लिए इंतजार करिए, मैं अभी जाता हूँ जंगल से मूल जो कंदमूल आदि है फल लेके आता हूँ। तो वो जाते हैं दौड़ते हुए निम्बार्कचार्य, और जाने से पहले वो क्या करते हैं, एक नीम के ट्री के ऊपर चढ़ते हैं और सुदर्शन चक्र उनके पास होता था, सुदर्शन चक्र को उस नीम के ट्री के ऊपर रख देते हैं और दौड़ कर जाते हैं और लेके आते हैं। तो सूर्यास्त होने वाला था तो ये ब्रह्मा ने देखा कि ये अद्भुत ये बालक है, सामान्य बालक नहीं है ये, तो लाया उन्होंने इनको सारी चीजें खिलाई, फल फ्रूट सारी सर्व किए और जैसे उन्होंने फल आदि खाए हाथ धोया तो ये निम्बार्कचार्य चढ़े उस पेड़ के ऊपर और अपना सुदर्शन को निकाल लिया। तो निकलते ही बल्कि काफी समय हो गया था, रात्रि हो गई थी, तो ब्रह्मा जी ने देखा क्योंकि कि ये इनका नाम फिर ब्रह्मा ने रखा निम्ब, निम्ब मीन्स नीम ट्री के ऊपर जो चढ़े और आर्क मीन्स सूर्य, तो इनका नया नाम ब्रह्मा ने रखा निम्बार्कचार्य, क्योंकि ये सुदर्शन के इनकार्नेशन है। जिस प्रकार से हम गौड़िया मध्व संप्रदाय में आते हैं तो मध्वाचार्य वायु के अवतार हैं, तो उसी प्रकार से जो ये कुमार संप्रदाय के आचार्य हैं निम्बार्कचार्य, ये भी भगवान का जो सुदर्शन चक्र है उसके महान आचार्य हैं। तो ऐसे निम्बार्कचार्य का आज आविर्भाव था और जो भगवान के बहुत महान भक्त थे कुमार संप्रदाय में, भगवान नारायण शिक्षा देते हैं हंस को और हंस से चार कुमार वो शिक्षा प्राप्त करते हैं, उनसे नारद उसी संप्रदाय में नारद भी आते हैं और नारद से ये जो निम्बार्कचार्य हैं वो शिक्षा प्राप्त करते हैं और आगे चल के श्रीनिवास आचार्य इस संप्रदाय में एक महान आचार्य हुए थे, वो आगे ये शिक्षा को प्रसारित करते हैं। तो ऐसे ये जो निम्बार्क संप्रदाय के रूप में प्रख्यात है और इनका जो मेन ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम है और ये राधा कृष्ण की जो उपासना है उसको सर्वोत्कृष्ट जो महत्व है हाँ वो प्रदान करते हैं। इस प्रकार से हम श्रीपाद निम्बार्कचार्य का स्मरण कर सकते हैं जो कृष्ण के महान भक्त हुए और निम्बार्क संप्रदाय की शिक्षा विशेष रूप से गोवर्धन वृंदावन बरसाना और दक्षिण भारत के कुछ स्थानों में हमें प्राप्त होती है। श्रीपाद निम्बार्कचार्य आविर्भाव तिथि महामहोत्सव के। तो जैसे कि मैंने कहा तुलसी महारानी की चर्चा करेंगे तो तुलसी विवाह इस्कॉन में तो केवल वृंदावन में ही मनाया जाता है तुलसी विवाह, और जो तुलसी महारानी का जो स्थान है वृंदावन वहां भी मनाया जाता है। तो तुलसी आध्यात्मिक जो साधक हैं जो भगवत सेवा में लगे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है तुलसी महारानी की जो सेवा है। तो हम देखते हैं कि तुलसी हम रोज गाते हैं तुलसी कृष्ण प्रियसी, तो कृष्ण के ही सर्वाधिक प्रिया है, सबसे अधिक भगवान तुलसी महारानी से प्रीति रखते हैं और कृष्ण बहुत अधिक आनंद अनुभव करते हैं जब वो देखते हैं कि कोई भक्त तुलसी महारानी का गुणगान कर रहे हैं, तुलसी महारानी के गुणों को सुना जा रहा है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म भगवत पुराण में वर्णन तुलसी महारानी के बारे में कई अध्यायों में पाया जाता है, जहां कहा गया है कि कृष्ण का जो गुण रूप लीला आदि की जो चर्चा है उसका जो लाभ हम प्राप्त करते हैं वही लाभ यदि व्यक्ति तुलसी महारानी का कोई गुणगान करता है वही लाभ उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो भगवान बहुत अधिक आनंद अनुभव करते हैं जब कोई व्यक्ति उनके भक्तों का गुणगान करता है। जिस प्रकार से भौतिक जगत में भी हम देखते हैं माता पिता बहुत अधिक आनंदित हो जाते हैं जब उनके बच्चे का कोई गुणगान कर रहा है, तो उसी प्रकार से कृष्ण इस चीज की स्थापना करने के लिए श्रीमद् भागवतम में कहते हैं मद भक्ता पूजा व्याधि कहा कि मेरे भक्त की जो पूजा है वो मुझसे भी बहुत अधिक श्रेष्ठ है। इसलिए हम बारंबार इसी चीज को कई बार सुनते हैं। जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में कहा है आमारा भक्तेर पूजा आमा है ते बड़ा, यही तो सिद्धांत गीता भागवते कैला दृढ़ कि मेरे भक्त की जो पूजा है वो मुझसे भी बढ़कर है, श्रेष्ठ है। और इसी कारण से भगवान श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता में इसकी व्याख्या करते हैं। और श्रील प्रभुपाद एक श्लोक को बहुत अधिक कोट किया करते थे। श्रील प्रभुपाद एक जगह कहते हैं कि जो पार्वती देवी है वो भी अज्ञान में है और वो कई बार ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने जो पति हैं शिवजी से प्रश्न पूछती हैं। और क्या प्रश्न पूछती हैं कि सारी आराधनाओं में सर्वोत्कृष्ट आराधना किसकी है, तो शिवजी उसे कहते हैं आराधना नाम सर्वेशा विष्णु आराधना परम, कि सारी आराधनाओं में जो विष्णु की आराधना है कृष्ण की आराधना है वो सर्वोत्कृष्ट है। लेकिन फिर भी अपना उत्तर वहां कंप्लीट नहीं कर रहे शिवजी। शिवजी वहां से आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि तस्मात परतरम देवी, ये देवी देवी सुनो क्या उससे भी बढ़कर है एक आराधना तदीयानाम समर्चनम। तदीय तदीय मीन्स तदीय का मतलब है कि भगवान की जो प्रिय चीजें हैं जो भगवान से प्रीति रखते हैं उनकी आराधना भगवत आराधना से सर्वोत्कृष्ट है। या श्रील प्रभुपाद कहते हैं तदीय मीन्स विच कनेक्टेड टू लॉर्ड कृष्ण, जो भी चीज कृष्ण से संबंध रखती है वो तदीय वस्तु है, जिसको टेक्निकल भाषा में तदीय शब्द यूज किया गया है शास्त्रीय भाषा में। और इसी को भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज तुलसी के बारे में गुणगान करते हुए वो एक श्लोक को उद्धृत करते हुए और कहते हैं कि अर्चयित्वा तु गोविंदम तदीयां न अर्चयत्तु यहां, कि कोई व्यक्ति गोविंद की बहुत अधिक आराधना में लगा है, बहुत उत्साह से लगा है और सब प्रकार से गोविंद की आराधना कर रहा है तदीयां न अर्चयत्तु हां, लेकिन यदि वो व्यक्ति भगवान से संबंधित जो तदीय वस्तु है भगवान से प्रीति रखने वाली वस्तुएं हैं उनकी आराधना करने में फेल हो जाता है न स भागवतो ज्ञः केवलं दाम्भिक स्मृतः, वो वास्तव में ट्रू डिवोटी नहीं है। भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा न स भागवतो ज्ञः, वो भगवत भक्त नहीं है केवल दाम्भिक स्मृतः, कि वो व्यक्ति केवल नाम का भगवत भक्त है। यदि वो भगवान से कनेक्टेड जो तदीय वस्तु है उनकी आराधना नहीं करता, इसलिए चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं कि क्या वो वस्तुएं हैं, कौन सी वो चार चीजें हैं जो भगवान को सर्वाधिक प्रिय है, या फिर कौन से ऐसी वो चार चीजें हैं जो साक्षात कृष्ण का स्वरूप है भगवान का रूप है। तो चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर इसका वर्णन करते हुए कहते हैं भागवत तुलसी गंगाय भक्त जने चतुर्था विग्रह कृष्ण यही चारी सने, कहते कि ये चार चीजें हैं, पहले है भागवत, दूसरा है तुलसी, तीसरा है गंगा और चौथा क्या है भगवान के जो भक्त हैं। चतुर्था विग्रह कृष्ण, ये नहीं कि ये कृष्ण के चार विग्रह हैं, कृष्ण इन चार रूपों में अवतरित होते हैं। यही चार सने जीवन्यास कर श्री मूर्ति पूजा है, जन्म मात्र यही चारे ईश्वर वेदिकाय। कि वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि विग्रह की पूजा तभी हम कर सकते हैं जब उस विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। जब उनके प्राण प्रतिष्ठा नहीं है तो वो विग्रह नहीं है, वो पूजा आदि स्वीकार नहीं करते। उसके लिए आवश्यकता है कि महान प्रेमी भक्त भगवान को बुलाता है और उस विग्रह में स्थापित करता है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, तभी वो जो मूर्ति है विग्रह है वो पूजनीय हो जाते हैं। लेकिन ये जो चार चीजें हैं, जन्म मात्र यही चारे ईश्वर वेदिक, जन्म मात्र मतलब ये चार चीजें शुरुआत से ही कृष्ण का स्वरूप है। इसलिए हम गाते हैं साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, सारे शास्त्र इसी चीज की चर्चा करते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं Krishna manifests himself in this world in four forms. On seeing them, one may not immediately recognize them as being the Lord, but one should still worship them, for due to their direct connection to the Lord, they are considered to be his manifestations. The name given in Sanskrit to such manifestations is Prakash Vigraha, the form by which the Lord appears in this world. कि ये जो चार चीजें हैं भगवान की प्रकाश विग्रह हैं, साक्षात भगवान ही हैं एक प्रकार से। तो इसलिए ये जो चार जिनको शास्त्रों में तदीय वस्तु कहा गया है, और तुलसी महारानी इन चारों में बहुत अधिक महत्व रखती है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज कहते हैं तदीय तुलसी वैष्णव मथुरा भागवत यही चारे सेवा है कृष्ण अभिमान। इन चारों की सेवा कृष्णेर अभिमत, अभिमत मीन्स कि कृष्ण की ये इच्छा है। क्या इच्छा है? कि इन चारों की कोई व्यक्ति सेवा करता है तो कृष्ण कहते हैं वो व्यक्ति मुझे सर्वाधिक प्रिय हो जाता है, वो मेरे लिए अनुकूल हो जाता है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण है, तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु का जो विशेष आकर्षण, विशेष लगाव आप तुलसी महारानी के साथ देखते हैं। चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत में कई सारे ऐसी घटनाएं आई हैं जिसमें चैतन्य महाप्रभु का जो प्रेम है वो तुलसी के प्रति प्रकट होता है। क्यों 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 चैतन्य महाप्रभु तुलसी महारानी के प्रति प्रेम या अपना आकर्षण, अपना झुकाव, अपना लगाव प्रकट कर रहे हैं? क्योंकि वो भगवान नहीं है, वो भक्त के रूप में आए हैं। और कृष्णदास कविराज ने कहा कि आपने आचरी भक्ति सिखायमु सवारे, कि ऐसे चैतन्य महाप्रभु आपने करेमु भक्ति भाव अंगीकार, भक्त के भाव को अंगीकार करके चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण से शिक्षा दे रहे थे। चाहे चैतन्य महाप्रभु अपने गृहस्थ जीवन में थे या संन्यास उन्होंने लिया था, दोनों समय में उन्होंने एक चीज से अपना जो सेवा का जो भावना है उसको कम नहीं किया, और वो थे श्रीमती तुलसी महारानी। तो जो चैतन्य महाप्रभु नवदीप में निवास करते थे तो उनका सुबह से दिनचर्या इस प्रकार से था। चैतन्य महाप्रभु सुबह सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे और अपने कई सारे भक्तों के संग में गंगा में स्नान करने के लिए जाते थे, और स्नान करके जैसे आते थे घर में घुसने से पहले अपने चरण धोया करते थे, और चरण धोते ही अपने नए वस्त्र, फ्रेश नए कपड़े धारण करते थे, और धारण करने के तुरंत बाद कृष्णदास कविराज कहते हैं वस्त्र परिवर्त करे धोईला चरण तुलसी रे जल दिया करेला सेवन। तुरंत ही जाते थे तुलसी महारानी के पास। सबसे पहला जो कार्य चैतन्य महाप्रभु करते थे वो तुलसी महारानी के पास जाते थे, उसको प्रणाम करते थे और उसका जल आदि देकर सेवन करते थे, और उसके बाद अपना जो अल्टर है गोविंद के जो शालिग्राम शिलाएं थे उनकी वो पूजा करते थे। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण से ये सिखाते हैं। बल्कि श्रील प्रभुपाद एक लेक्चर में कहते हैं All the devotees should pour water at least once in the morning before taking prasadam. Prabhupada ne kaha har ek vyakti ko compulsory hai bhojan karne se pehle usko kya karna chahiye, tulsi maharani ko jal dena chahiye. क्योंकि तुलसी महारानी तो श्रील प्रभुपाद ने हमें इंट्रोड्यूस किया है। एक शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्ति की सेवा प्रदान कर सकता है या भगवत सेवा प्रदान कर सकता है। तो हम रोज गाते हैं, मोर यही अभिलाष विलास कुंजे देवोवास नयने हरिबो सदा जुगल रूप राशि। जुगल मीन्स दो, ये जो राधा कृष्ण है मैं तभी देख पाऊंगा जब मैं आपका आश्रय ग्रहण करूंगा। मोर यही अभिलाष, मैं कौन सी अभिलाषा लेकर यहाँ आया हूँ, विलास कुंज देवोवास। विलास मीन्स नाना प्रकार की जो लीला स्थली है, वृंदावन है, ब्रज है, वहां में मुझे निवास करने की इच्छा है। और वो जो इच्छा की पूर्ति केवल तुलसी महारानी की कृपा से ही हो सकती है। हाँ, वृंदावन में जो प्रवेश है, इसलिए आध्यात्मिक जगत में तीन चीजें नित्य रूप से विद्यमान है। कौन सी वो तीन चीजें? शास्त्र कहते तुलसी, दूसरी है यमुना और तीसरे है गोवर्धन। आध्यात्मिक जगत जिसको गोलोक वृंदावन कहा जाता है, जहाँ भगवान निवास करते हैं, और वही गोलोक वृंदावन को कृष्ण ये जगत में लेकर आते हैं, तो उसे भौम वृंदावन कहा जाता है। तो आध्यात्मिक जगत में ये तीनों चीजें नित्य विद्यमान है, नवायमान है, लेकिन वो तीन चीजें इस जगत में प्रकट होती है केवल हमारे जैसे बद्ध जीवों को कृष्ण प्रेम प्रदान करने हेतु। इसलिए कहा कि ये तीन चीजें बहुत पावरफुल है ब्रज में, तुलसी, यमुना और गोवर्धन। इसलिए ब्रह्म नारदीय पुराण में वर्णन आता है कि ये जगत में तीन चीजें बहुत दुर्लभ है, और वास्तव में इन तीन चीजों के संपर्क में जो व्यक्ति आया है वो व्यक्ति सर्वाधिक भाग्यशाली है। कौन सी तो तीन चीजें हैं? तो नारद कहते हैं दुर्लभ तुलसी सेवा, दुर्लभ तुलसी सेवा, दुर्लभ संगति सताम। सबसे पहले तो एक दुर्लभ चीज संसार में है, वो है तुलसी की सेवा करने का सौभाग्य किसे प्राप्त होता है। दुर्लभ तुलसी सेवा, दुर्लभ संगति सताम। जो भगवान के प्रिय भक्त है, ऐसे भक्तों का संग प्राप्त करना, जैसे श्रीमद् भागवतम में कहा है कि ये जो मनुष्य जीवन है दुर्लभ है, लेकिन इससे भी अधिक दुर्लभ क्या है? भगवान के जो भक्त है उनका संग प्राप्त होना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब रामानंद राय से मिले तो रामानंद राय को यही पूछा उन्होंने कि इस संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है। जिस प्रकार से चाणक्य पंडित ने कहा कश्य सौख्य निरंतरम, कौन ऐसा व्यक्ति संसार में है जो हमेशा हमेशा के लिए सुखी है, कोई है नहीं है। तो उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने कहा सबसे बड़ा दुख क्या है इस जगत में। तो हम सोचते हैं कि हमारे पास कई प्रकार के दुखों से हमारा मन, हमारा हृदय, हमारा शरीर गुजरता है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने जब ये प्रश्न पूछा तो रामानंद राय ने कहा इस संसार में सबसे बड़ा दुख यही है कि भगवान के भक्तों के संग से हम वंचित हो जाते हैं। और वास्तव में हम अनुभव कर सकते हैं कि भगवान के भक्तों के संग से हम वंचित हो जाते हैं तो वही हमारे लिए बहुत अधिक कष्ट है। तो इस प्रकार से नारद कहते दुर्लभ तुलसी सेवा, दुर्लभ संगति सताम, दुर्लभ हरि भक्ति संसार नव पातिनाम। जो इस संसार में पतित हो गए हैं, इस संसार में गिर गए हैं, उन लोगों के लिए ये तीन चीजें वास्तव में दुर्लभ हैं। लेकिन हम बहुत अधिक सौभाग्यशाली हैं कि श्रील प्रभुपाद की कृपा का आश्रय लिया है, तो उनकी कृपा से ये तीन चीजों से ये तीन चीजें हमें क्या हो रही हैं? सुलभ हो रही हैं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु चाहे अपने गृहस्थ आश्रम में हो या सन्यास आश्रम में हो, सदा सर्वदा तुलसी देवी को वो सेवन करते थे। चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य भागवत में वर्णन आता है, मैं थोड़ा रीडिंग करता हूँ। चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार से तुलसी से प्रीति रखते थे। तुलसी रा भक्ति अबे सुन मन दिया, जे रूपे कैले न लीला तुलसी लैया। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि हे भक्तो मन देकर सुनो। क्या सुनो? कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने ये तुलसी लीला की थी। तो चैतन्य महाप्रभु को बहुत अधिक आनंद होता था जब कोई व्यक्ति या कोई भक्त तुलसी का रोपण करता था किसी गमले में, गमला कहते हैं, गमले में रोपण करता था। तो महाप्रभु कितने समय तक देखा करते थे। और भी चैतन्य महाप्रभु की इस लीला का वर्णन करते हुए वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, प्रभु बोले आमे तुला सिरे ना देखिले, भाल नाही बासो जेना मत्स्य बिना चले। उन्होंने कहा, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जब या जिस दिन मैं तुलसी महारानी को नहीं देखता, तुलसी को नहीं देखता, बालना ही बासो, मुझे अच्छा नहीं लगता, और मेरी स्थिति क्या हो जाती है, जन मत्स्य बिने चले, कि जो मछली है पानी के बिना रह नहीं सकती, तड़पती है, उसी प्रकार से मेरा जो हृदय है वो तुलसी महारानी को बिना देखे ठीक अनुभव नहीं करता। जब चले संख्या नाम करे अग्रहान, तुलसी लैया अग्रे चले एक जान। और चैतन्य महाप्रभु अपना जो प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ राउंड्स, अपने जो माला है, चैतन्य महाप्रभु भी संख्या पूर्वक नाम करते थे, और उनके जो अनुयायी है चाहे हरिदास ठाकुर आदि, वो भी संख्या पूर्वक नाम करते थे, षड गोस्वामी आदि। तो महाप्रभु फिक्स नंबर अपना वो जप किया करते थे, और सारे जप की जो संख्या है वो तुलसी महारानी के सामने बैठकर ही कंप्लीट करते थे। जब चले संख्या नामक करे या ग्रहण, तुलसी लये आग्रह चले एक जन। तो महाप्रभु कभी चलते चलते जप करते थे, तो एक भक्त हमेशा तुलसी लेके चलता था, और चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, तुलसी को देखते हुए अपना चैंटिंग करते थे। पछाते चले न प्रभु तुलसी देखिया, परे आनंद धारा श्री अंग बहिया। और चैतन्य महाप्रभु तुलसी को देखते देखते जप करते थे, और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती थी तुलसी को देखने मात्र से, और उनका सारा शरीर जल से भर जाता था। संख्या नाम लेते जे स्थाने प्रभु बैसे, तथा ही राखे न तुलसी रे प्रभु पाशे। और जिस स्थान में चैतन्य महाप्रभु बैठकर जब करते थे, उस स्थान में तुलसी हुआ करते थे, और महाप्रभु अपना चैंटिंग करते थे। तुलसी रा देखे न जपे न संख्या नाम, ये भक्ति योगे रा तत्व के बुझे बयान। तो ये भक्ति योग का सर्वोत्कृष्ट तत्व है। तो चैतन्य महाप्रभु अपने इस आचरण से सिखाते हैं कि किस प्रकार से तुलसी महारानी है वो इतनी शक्तिशाली है, उसका केवल व्यक्ति आश्रय ग्रहण करता है तो उसके लिए भगवत भजन बहुत अधिक सुलभ हो जाता है, भगवान नाम संकीर्तन आदि। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा, ये जो तुलसी महारानी है भगवान की प्रकाश विग्रह है, अर्चा विग्रह है, लेकिन कैसा अर्चा विग्रह है, वृक्षार्चा अवतार। कैसा है, वृक्षा अर्चा अवतार, वृक्ष के रूप में भगवान अवतरित होते हैं इस तुलसी महारानी के रूप में। तो तुलसी महारानी का जो गुणगान है हमारे संप्रदाय में सारे आचार्यों ने किया है, हर एक आचार्य ने तुलसी महारानी का आश्रय ग्रहण किया है। इवन गोपिकाएं वृंदावन में तुलसी महारानी का गुणगान करती हैं। वो कहती है, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, हे गोविंद के चरणों, जिसको गोविंद के चरण बहुत अधिक प्रिय हैं इस संसार में, वो केवल तुलसी है, ऐसी गोपिकाएं कहा करती थी। श्रीमद् भागवतम में प्रभुपाद तीसरे स्कंद के एक तात्पर्य में लिखते हैं कि इवन ये जो लक्ष्मी देवी है, जो भगवान के चरणों का हर समय सेवा में वो लगी रहती है, सेवा करती रहती है, लेकिन कभी कभी ऐसे लक्ष्मी देवी को भी ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है। किससे वो द्वेष करती है, तुलसी। क्यों क्यों? तो तुलसी महारानी कभी भी कृष्ण के चरणों को छोड़ती नहीं है, ये उसका गुण है। बल्कि गंगा कृष्ण के चरणों से निकली, लेकिन कृष्ण के चरणों को छोड़कर भाग रही है। कृष्ण इतना अधिक प्रीति नहीं दिखाते, लेकिन तुलसी महारानी के लिए कृष्ण बहुत अधिक प्रीति दिखाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि ये जो लक्ष्मी देवी है, जो सदैव मेरे चरणों में के मसाज आदि सेवा में लगी रहती है, उससे भी मुझे अधिक जो प्रीति है वो तुलसी महारानी से है, या तुलसी से है। इसलिए हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी कहते हैं, विष्णु त्रैलोक्य नाथ श्य रामश्य जनकात्मजा, प्रिय तथैव तुलसी सर्वलोके कपावने। जिस प्रकार से भगवान राम तीनों लोगों के नाथ है या उनकी आत्मा जनक आत्मा जहां है सीता देवी है, उसी प्रकार से प्रिय तथैव तुलसी, उसी प्रकार से भगवान को जो तुलसी महारानी है वो बहुत अधिक प्रिय है। इसलिए कृष्ण एक जगह कहते हैं, हित्वा तीर्थ सहस्राणि सर्वे नपि शिलोचयन् तुलसीकानने नित्यं कलोतिष्ठति केशवा। जो केशव है कृष्ण है वो कहते हैं कि मैं सारे तीर्थ आदि स्थानों को छोड़ देता हूं और मैं कहां निवास करने के लिए भागता हूं, तुलसी कानने। कानने मीन्स वन फॉरेस्ट, हाँ तुलसी जो वन है, हाँ तुलसी का वन कौन सा है, कौन सा है, वृंदावन। तो भगवान इतना अधिक प्रीति रखते हैं कि तुलसी महारानी के नित्य स्मरण आदि के लिए उन्होंने अपने धाम का भी नाम तुलसी महारानी के नाम से रखा है। ये उनकी भक्त वत्सलता है। वृंदावन, वृंदावन का मतलब है, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जहां वृंदा देवी बहुत अधिक मात्रा में फलती फूलती है, बढ़ती है। हाँ, तो एक बार श्रीमती राधिका ने, हाँ, जब उनके हृदय में प्रश्न आया कि कृष्ण का संग मुझे प्राप्त करना है या कृष्ण को आकृष्ट करना है, भगवान को प्रसन्न करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए कि ऐसा करने से कृष्ण बहुत अधिक प्रसन्नता अनुभव कर सकते हैं या प्रसन्न हो सकते हैं बहुत तीव्रता से। तो उनकी एक सखी है चंद्रानना, चंद्रानना, तो वो शास्त्रीय स्क्रिप्चर्स आदि के अध्ययन में बहुत एक्सपर्ट है और उसको पता है कि क्या चीजें करने से कृष्ण को आकृष्ट किया जाता है। तो जब उस सखी चंद्रानना को श्रीमती राधिका ने ये पूछा, हाँ, तो वो बोलने लगी, उन्होंने कहा कि हे श्री राधे, केवल तुलसी का 9 प्रकार से सेवा करने से व्यक्ति कृष्ण को अपनी ओर क्या कर सकता है, आकृष्ट कर सकता है। कृष्ण की अनुकंपा, कृष्ण का जो कृपा दृष्टि है वो अपनी ओर प्राप्त कर सकता है। तो वो कहती है कि क्या 9 प्रकार की सेवा है जो तुलसी महारानी के लिए हम कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा सबसे पहले है तुलसी महारानी को देखना, ये भी एक सेवा है। क्या करना, देखना, दृष्टिपात करना। वास्तव में, हाँ, तुलसी महारानी का वर्णन आता है कि तुलसी महारानी इतना इतनी महत्वपूर्ण है उनका जो संग है। यदि कोई व्यक्ति तुलसी महारानी के संग में आता है तो वास्तव में तुलसी महारानी के संग के 3 लाभ हैं। एक लाभ तो है कि तुलसी महारानी का जो मड़ है, मिट्टी होता है, वो ब्रज धूली है, शास्त्र कहते हैं। क्या है, ब्रज धूली है। वृंदावन की रज की आकांक्षा हम करते हैं, वास्तव में तुलसी महारानी के नीचे जो भी रज होता है, धूली होता है, वो वृंदावन का ब्रज धूली है। कई शास्त्रों में, श्लोकों में वर्णन आता है। और दूसरी चीज क्या है कि तुलसी महारानी के संग से हमें शुद्ध भक्त का एसोसिएशन मिलता है। हम सोचते शुद्ध भक्तों को ढूंढता, कहां है शुद्ध भक्त, उसकी सेवा करनी है, लेकिन शुद्ध भक्त रो रहा है, हम उसका केयर नहीं कर रहे हैं। शुद्ध भक्त कृष्ण के लिए रोते हैं। हाँ, जो तुलसी महारानी है, हाँ, हम शुद्ध भक्त की सेवा की आकांक्षा करते हैं और कहते हैं नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवा। तो तुलसी महारानी वास्तव में देखा जाए बहुत महान भक्त है, तो उनका एसोसिएशन हमें प्राप्त होता है शुद्ध भक्त के रूप में। और शास्त्र कहते हैं कि तीसरी चीज क्या है, दर्शने पवित्र कर यही तो हमारा गुण। तुलसी महारानी का दर्शन करने मात्र से शास्त्र कहता है कि तदा रजस तमो भावा काम लोभा दयश्चय। तुलसी महारानी पर दृष्टिपात, उनको देखने मात्र से व्यक्ति के हृदय में जो रजोगुण और तमोगुण है उसका विनाश होने लगता है और जो काम है और लालच लोभ आदि है भौतिक, वो हमारे हृदय को छोड़कर भागने लगता है। जिस प्रकार से गाय है, कोई व्यक्ति को बहुत अधिक क्रोध आता है तो शास्त्र कहते हैं कि उसको जाकर गाय को 3-4 मिनट रोज देखना चाहिए सुबह सुबह, क्योंकि सत्व गुण का कोई प्रतीक है जो नीचे से लेकर ऊपर तक शुद्ध पूर्ण रूप में सत्व गुण में स्थित है, तो वो गाय है। कौन है, गाय है। गाय की सारी चीजें, चाहे उसका गोबर है, मूत्र आदि है, हर चीज सत्व गुण का स्वरूप है। तो ऐसे उसी प्रकार से ये जो तुलसी महारानी है उनको देखने मात्र से व्यक्ति शुद्ध गुण जो सत्व गुण है वो अनुभव करता है, प्राप्त करता है। तो इसलिए वो चंद्रानना श्रीमती राधिका ने जब ये प्रश्न पूछा तो उन्होंने कहा, सबसे पहले कहा कि इस प्रकार से सेवा की जा सकती है कि तुलसी महारानी को देखना रोज विदाउट फेल, और दूसरी चीज क्या है उसको टच करना, स्पर्श करना। तुलसी महारानी का स्पर्श करने मात्र से व्यक्ति ये हो जाता है, परिवर्तन आता है। टच ही क्या, श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंध में वर्णन आता है कि ये जो चार कुमार है सनक सनातन सनंदन आदि, ये जब वैकुंठ लोक के लिए गए थे ये वास्तव में निराकार ब्रह्म के प्रति आकृष्ट थे। भगवान का जो निराकार स्वरूप जो की धारणा है, तो ऐसे चार कुमार जब वैकुंठ लोक जा रहे थे वो भगवान के स्वरूप आदि के प्रति आकृष्ट नहीं थे। तो जब उन्होंने उनको जय विजय जो वैकुंठ के सिक्योरिटी गार्ड्स थे उन्होंने रोका, ये बहुत अधिक थोड़े गुस्सा हो रहे थे, उसी समय अपने इन सेवकों के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान नारायण वैकुंठ अपने महल आदि से बाहर आते हैं। भगवान आए ही नहीं थे अभी, लेकिन उससे पहले क्या चीज पहुंची, सुगंध। जैसे फूल दूर है तो पहले हमारे पास क्या आएगा, सुगंध आएगा। उसी प्रकार से भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में आए रहे थे, गेट पर क्या हुआ, बहुत लड़ाई झगड़े का आवाज आ रहा था तो भगवान भागे, तो वहां उन्होंने देखा भगवान तो दूर ही थे, चार कुमारों ने भगवान को देखा नहीं, लेकिन केवल भगवान के अंगूठे में लगी हुई जो तुलसी है उसका सुगंध हवा के द्वारा आकर इनके कहां घुस गया, नाकों नाक से उन्होंने सुगंध को ले लिया। तो श्रीमद् भागवत में कहा गया है, तशारविंद नयन शपदारविंद किंजल मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गता सुविवरे न चकार तेषां संक्षोभम अक्षरजुषाम अपि चित्त तन्वो। तशारविंद उनके चरणों से, नयनश्च पदारविंद उनके चरणों में किंजल का हाँ जो अंगूठा है, मिश्र तुलसी मकरंद वायु, मकरंद का मतलब है सुगंध, तो वायु के साथ मिक्स होकर वो सुगंध अंतर्गता स्वविवरेण विवरेण में छेद, तो ऐसे दो छेदों से नाक के द्वारा जब इनके हृदय में पहुंची तो इनके हृदय में एजिटेशन होने लगा। किनके, जो चार कुमार हैं, निराकार स्वरूप के प्रति उनकी ये धारणा थी, एजिटेशन होने लगा, और उनकी जो अक्षरम जुषाम अपि जो निराकार धारणा के प्रति जो उनकी आसक्ति थी वो उनके हृदय से हट गई। उनका जो चित्त है तुरंत ही कृष्ण में लग गया। तो इस प्रकार से तुलसी महारानी का स्पर्श ही क्या, तुलसी महारानी का जो सुगंध है उसके द्वारा इतना सामर्थ्य है कि निराकारवादी भगवान के निर्विशेष के रूप के प्रति या धारणा के प्रति जो आकृष्ट है वो भी भगवान के शुद्ध भक्त बन जाते हैं। तो ऐसी जो तुलसी महारानी है, चंद्रानना ने कहा कि पहले उसको देखो, उनका स्पर्श करो, तीसरा है उनका स्मरण करो, क्या करो, स्मरण, और चौथा है उनको ग्लोरीफाई करो तुलसी महारानी को, और पांचवी चीज है उनको प्रणाम करो हर समय, और जो छठी चीज है उनकी प्रार्थनाओं को चांट करो, प्रेयर्स चांट करो, और सातवीं चीज है उनको लगाओ, उनका रोपण आदि करो, और आठवीं चीज वो कहती है विदाउट फेल, ऐसा दिन नहीं जाना चाहिए। प्रसाद लेने से पहले तुलसी महारानी को व्यक्ति ने प्रभुपाद ने कहा, प्रसाद लेने से पहले का जो भी कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट में डिवोटीज है उनको प्रसाद लेने से पहले एक बार तो दिन में तुलसी महारानी को जल देना चाहिए, और नवी चीज उन्होंने कहा कि उनकी पूजा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो सॉल्यूशन श्रीमती राधिका को चंद्रानना सखी ने दिया था वही चीज हमें श्रील प्रभुपाद की कृपा से कितनी आसान हो गई है, हम सोच भी नहीं सकते थे। शास्त्रों के इस महान छुपे हुए रहस्य और मर्म को श्रील प्रभुपाद ने सारे जीवों के लिए, चाहे वो क्वालिफाइड है या अनक्वालिफाइड है, उसको श्रीमती तुलसी महारानी के जो ये सेवा है वो प्रदान की है। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने हमें दो बार सुबह और शाम तुलसी महारानी का जो गुणगान है वो करने का मौका प्रदान किया है। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, If they chant Hare Krishna mantra and worship Tulsi leaf, they will be liberated without fail and they will become devotees. Prabhupada ne kaha, yadi ye log kya karenge? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग करेंगे और तुलसी महारानी की सेवा करेंगे, निश्चित रूप से विदाउट फेल वो कृष्ण के सर्वोत्कृष्ट भक्त बन सकते हैं। और चैतन्य चरितामृत में जहां भी किसी भक्त ने किसी और भक्त को चैंटिंग करने के लिए कहा तो उसी के साथ साथ जरूर ये मेंशन किया है कि आपको तुलसी की सेवा करनी चाहिए। इवन वेश्या हरिदास ठाकुर के पास जब वो वेश्या आई और हरिदास ठाकुर ने उनका उद्धार किया और अपनी जपमाला उसके हाथ में पकड़कर उनको पहला इंस्ट्रक्शन दिया हरिदास ठाकुर ने, क्या कहा? निरंतर नाम लवो कर तुलसी सेवान अचिरात पावे तवे कृष्ण रचरण। उन्होंने कहा निरंतर नाम लवो कर तुलसी सेवन। उन्होंने कहा कि वास्तव में भगवत नाम है लेकिन उसके साथ भगवत भक्त जो भगवान को कृष्ण को जो प्रिय है उनकी सेवा में लगेगी तो हरि नाम करने में सर्वाधिक जो स्ट्रेंथ है वो व्यक्ति प्राप्त करता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद हरिदास ठाकुर के बारे में वर्णन करते हुए चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, निर्जन वने कुटीर करे तुलसी सेवान रात्रि दिने तीन लक्ष नाम संकीर्तन। तो इनका शेड्यूल बता रहे हैं कि हरिदास ठाकुर करते क्या थे। निर्जन वने कुटीर करी, निर्जन वन जहां कोई व्यक्ति आदि नहीं भ्रमण करते वहां जाकर इन्होंने अपना कुटिया बनाया और क्या किया, तुलसी सेवन, तुलसी का सेवा करते थे हरिदास। और फिर रात्रि दिन तीन लक्ष नाम संकीर्तन, 3,00,000 नामों का उच्चारण करते थे। तो उस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद देखते हैं, The process of chanting the Hare Krishna Mahamantra with a vow before the Tulsi plant has such great spiritual potency that simply by doing this one can become spiritually strong. Prabhupada ne kaha itni samarthya, itna shakti hai ki koi vyakti Tulsi Maharani ke sang mein Hari naam ka uchcharan karta hai, wo adhyatmik jivan mein strong ho jata hai. Uske aage Prabhupada likhte hain, Therefore we request the member of Hare Krishna movement to follow Haridas Thakur's example rigidly. The process has immense spiritual potency. One should not miss this opportunity. इसलिए Prabhupada कहते हैं कि भक्तों को प्रयास करना चाहिए, हरिदास ठाकुर के इस उदाहरण को फॉलो करना चाहिए। और ये जो वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है आध्यात्मिक उन्नति की, इसको क्या नहीं करना चाहिए, गवाना नहीं चाहिए। तो इसलिए सारे शास्त्र एक चीज पर जोर देते हैं, विशेष रूप से जो तुलसी महारानी का जो सेवा है, तुलसी महारानी की जो महिमा है, हम देखते हैं कि किस प्रकार से आप कृष्ण को वश करने का एक उपाय है। जैसे अद्वैत आचार्य ने देखा कि कलयुग में सारे जीव कृष्ण भक्ति से विहित थे, आसुरी कार्यों में अपने आप को लगा रहे थे, इंद्रिय तर्पण आदि में। तो बहुत अधिक करुणा या दुख अद्वैत आचार्य के हृदय में उमड़ रहा था। उसी समय वो एक ग्रंथ पढ़ रहे थे, गौतमीय तंत्र, श्री राधा गोविंद देव की। तो जब अद्वैत आचार्य एक बुक पढ़ रहे थे तो अचानक उनको एक श्लोक पढ़ने में आया और वो सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे, कृष्णदास कविराज कहते हैं, कृष्ण वर्ष करीबे न कोन आराधने विचारिते एक श्लोक आयला तार मने। तो अद्वैत आचार्य जैसे सोच रहे थे कि कैसे कृष्ण को वश में किया जाए, क्या करने से कृष्ण की जो अनुकंपा है, कृपा है, वो अनुकूल हो सकती है, तो उसी समय उनको एक श्लोक स्मरण आया। क्या था वो श्लोक, तुलसी दल मात्रे न जलश चुलुके न वा विक्रणिते स्व आत्मानं भक्त्योभ्यो भक्त वत्सलः। कि भगवान भक्त वत्सल है, इतने भक्त वत्सल है कि कोई व्यक्ति यदि तुलसी दल मात्रे न, तुलसी का थोड़ा सा दल या तुलसी का एक लीफ भी पत्र भगवान को अर्पित किया जाता है, हाँ, थोड़े जल के साथ। जलश चुलुकेनवा विक्रीणेते स्वात्मानं, भगवान अपने आप को बेच देते हैं उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति के वश में हो जाते हैं, उस व्यक्ति के हो जाते हैं। हम देखते हैं द्वारका की उस लीला को, आपने सुना होगा, जब सत्यभामा नारद जी जब गए इंद्र के पास से, तो वो एक पारिजात पुष्प लेकर गए थे द्वारका में। उनको द्वारका जाना बहुत अच्छा लगता था, क्यों? क्योंकि उनको दक्ष के द्वारा श्राप मिला था कि एक जगह आप ज्यादा रुकोगे नहीं, लेकिन जब धाम में जाते थे सारे श्राप कोई काम नहीं करता था, और उनको आनंद आता था कृष्ण को देखना, कृष्ण के कार्यों को देखना सुनना। तो एक दिन इंद्र की ओर से जा रहे थे स्वर्ग से, तो उन्होंने एक पारिजात पुष्प ले गए, और वहां रुक्मिणी के साथ कृष्ण बैठे थे, उन्होंने जाकर कृष्ण को दिया और ये कहा कि आप सबसे अधिक जिनसे प्रीति रखते हो उनको दे दो। कृष्ण को भी उन्होंने ये डाला, कंफ्यूजन क्रिएट किया। कृष्ण भी बहुत अच्छा है कि 16,100 रानियां नहीं थी वहां, एक ही थी, रुक्मिणी देवी बैठे थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अभी सबसे प्रिय और रुक्मिणी के सामने बोला है, तो भगवान को शायद सोचना होगा या ढोंग करना होगा कि हाँ ये मुझे प्रिय है, तो उन्होंने रुक्मिणी को पकड़ाया। बल्कि भगवान को ये 16,100 रानियों से भी शास्त्र कहते हैं श्रीमती तुलसी देवी प्रिय है। इसलिए तुलसी महारानी के अलग अलग नामों का जो मीनिंग दिया गया है उसमें जो महारानी, हम कहते हैं ना तुलसी महारानी, महारानी मीन्स शास्त्र कहते हैं कि तुलसी 16,108 रानियों से भी भगवान को अति प्रिय है, इसी कारण से शास्त्र उनको महारानी कहते हैं। तो जब भगवान ने रुक्मिणी को दिया पारिजात पुष्प, तो नारद वा रुके नहीं, तुरंत सत्यभामा के पास गए, और आपको पता है उन्होंने कहा, क्या कहा कि किसको उन्होंने पारिजात, तो उसको दे दिया, और बहुत अधिक प्रीति रखते हैं। वास्तव में कृष्ण कभी नारद पर विश्वास नहीं करते थे। राधापुर में एक लीला आता है कि एक बार कृष्ण श्रीमती राधिका को बताते हैं, बहुत बोला उन्होंने, ये नारद आएगा ना उसकी बातें मत सुनना, ये वो करता है ये करता है, ऐसे बहुत बोला। और एक बार नारद आए गए, और वहां कृष्ण के पास श्रीमती राधिका नहीं थी, और आए और उन्होंने ललिता कुंड आप देखते हैं राधापुर में, वहां कहा कि हे कृष्णा मेरी एक बहुत इच्छा है, उसकी पूर्ति कीजिए। बोलो बोलो क्या इच्छा है। तो उन्होंने कहा आप एक दिन ना ललिता के साथ झूलन में बैठिए। ललिता के साथ झूलन में बैठिए, जो हम स्वीट फेस्टिवल करते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपकी बिजी है, इच्छा पूर्ति कर दूंगा। तो एक दिन क्या हुआ कि श्रीमती राधिका लेट हो गई आने में, तो वहां सारी गोपिकाएं सखिया आदि खड़े थे, ललिता माँ देवी आदि, और झूलन खाली था। उस समय नारद आया, नारद ने कहा कि हे कृष्ण अब मेरी इच्छा को पूर्ति करो, अभी देखो ललिता है आप हो, आप झूलन में बैठ जाओ। तो कृष्ण कहते हाँ ठीक है, ललिता सखी नहीं, कृष्ण के साथ कौन बैठेगी, श्रीमती राधिका। तो कृष्ण ने जैसे ही कहा तो ललिता सखी को बैठना पड़ा, वो बैठी, नारद रुके नहीं, कहा गए नारद वहां से तुरंत श्रीमती राधिका के पास जाते हैं, जो नजदीक थी बरसाना या कहा, और कहा आपको पता नहीं वहां कृष्ण तो ललिता के साथ बैठ के झूलों खेल रहे हैं। श्रीमती राधिका देख ली, चलो चलो तुम देखो, और देखकर इतना गुस्सा आया, और इन्होंने मान प्रकट किया, मान। तो मान फिर कृष्ण आते हैं, उन्होंने कहा मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि जो नारद है उनकी बातों को सीरियसली मत लो। तो उसी प्रकार से सत्यभामा के पास आए, और सत्यभामा से उन्होंने कहा कि आप नहीं जानते कि कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय तो रुक्मिणी है, और पारिजात फूल तो उनको दिया है। उन्होंने कहा क्या करना चाहिए जिससे मुझे पारिजात नहीं पारिजात का वृक्ष ही मिल जाए। सत्यभामा ने, तो इनको गुरु हैं, नारद सत्यभामा के गुरु हैं, उन्होंने उनसे दीक्षा ली, और नारद ने जो जो चीजें कही वो की, और बाद में अब वो लीला आता है कि किस प्रकार से भगवान ने वृक्ष ही नहीं भगवान गरुड़ के ऊपर द्वारका से बैठकर सत्य बाबा को ले गए स्वर्ग में, और वहां नंदन कानन जो गार्डन है वहां पारिजात वृक्ष जिसको कितना सिक्योरिटी होता है वहां से पूरा पेड़ ही उठा के ले आए, इंद्र के साथ युद्ध किया इसको प्रसन्न करने के लिए। और फिर नारद इंद्र फिर से आए, उन्होंने कहा दक्षिणा चाहिए, गुरु दक्षिणा चाहिए, आपकी इच्छा तो पूर्ति हो गई। तो उन्होंने क्या, उन्होंने कहा नारद ने कि आपको जो सबसे अधिक प्रिय है वो मुझे दक्षिणा में दे दो। सत्य बाबा ने कहा मेरे प्राणनाथ, मेरे मुझे सर्वाधिक प्रिय तो कृष्ण है, अब उनको दे जा। सत्य बाबा ने कहा, कृष्ण का तुरंत नारद हाथ पकड़ते हैं और निकलते हैं बाहर महल से। उसी समय सारी रानियां जो रुक्मिणी जो उनकी प्रमुख थी वो आती है, कहती है आके अकेले के कृष्ण नहीं है, हाँ कृष्ण हम सबके भी हैं तो हम नहीं जाने देंगे। तो नारद को कहते कि कैसे आप वापस दोगे। नारद ने कहा कि मुझे कृष्ण को अभी तराजू में, क्या कहते तराजू, तराजू में रखो, एक और कृष्ण और एक और सारा जो गोल्ड आदि है आभूषण धन आदि, हाँ और उतना धन में ले जाऊंगा। तो सारी रानियों ने विचार नहीं किया, अपना सारे आभूषण आदि निकाले और वो डालने लगी रुक्मिणी आदि, जितना डालते जा रहे थे कृष्ण भारी थे, वो ऊपर नहीं उठ रहे थे, तराजू का एक जो साइड है समान नहीं हो रहा था। हाँ तो रुक्मिणी को तुरंत, वो सबसे अधिक बुद्धिमान है, तो रुक्मिणी ने सारे जो अलंकार आदि है गोल्ड आदि है उसको हटा दिया। और रुक्मिणी ने क्या किया, वहां तुलसी का एक पत्ता लिया और उसके ऊपर क्या लिखा, हरे कृष्णा कृष्णा लवली,
हरे 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 राम 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 हरे हरे।
तो रुक्मिणी ने कृष्ण नाम लिखा उस पर और उस तुलसी के पत्ते को वहां रख दिया, एक क्षण नहीं लगा कृष्णा ऊपर हो गए। और नारद क्या ले गए अपने साथ, शास्त्र कहते हैं सारे जो तीर्थ है जितने भी तीर्थास है पूरे 14 भुवन में 14 प्लैनेट्स में वो सारे तुलसी के पत्ते की शरण लेते हैं, तुलसी के पत्ते में निवास करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति ऐसे तुलसी की शरण ग्रहण करता है उसको किसी और चीज का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कृष्ण की जो आराधना है, कृष्ण को वश करने का जो उपाय है, हाँ वो तुलसी महारानी का आश्रय ग्रहण करना है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को जगन्नाथपुरी में अपनी गोवर्धन शिला दी और वो शिला देकर उनको कहा कि हे रघुनाथ तुम इस गोवर्धन शिला की सात्विक भावना से पूजा करो और ये तो क्या होगा, आचिरात पावे तुम्हें कृष्ण प्रेम धन, तुरंत ही तुम कृष्ण प्रेम धन प्राप्त करोगे जब इस गोवर्धन शिला की पूजा करोगे। और कैसी पूजा करो, सात्विक भावना से। चैतन्य महाप्रभु ने कहा एक चीज करने मात्र से ही गिरिराज या कृष्ण सर्वाधिक प्रसन्नता अनुभव करते हैं। एक कुंजा जल आर तुलसी मंजरी सात्विक सेवा ये शुद्ध भाव करे, कि कुछ नहीं चाहिए कृष्ण सेवा के लिए। शास्त्र कहते हैं कि कृष्ण हीरे माणिक्य जवाहरात आदि उनके जितने मर्जी पत्ते बना दो या कुछ भी अलंकार आदि बनाओ, कृष्ण उसको धारण करने में परेशानी महसूस करते हैं, कष्ट महसूस होता है। लेकिन कोई व्यक्ति उनको तुलसी ऑफर करता है, कृष्ण सर्वाधिक आनंद अनुभव करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा थोड़ा सा जल और तुलसी की जो मंजरी है ये रोज तुम शुद्ध भावना से अर्पण किया करो। और कैसी होनी चाहिए वो मंजरी, द्विदि के द्वि पत्र मध्य कोमल मंजरी यही मत अष्ट मंजरी दिवे श्रद्धा करी। उन्होंने कहा कि रोज तुम 8 मंजरी गिरिराज को ऑफर किया करो। जो मंजरी बीज होता है ना, बीज और दोनों साइड से 2 पत्ते होने चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा इस प्रकार से आप अर्पित करोगे तो कृष्ण बहुत अधिक प्रसन्न हो जाएंगे। और आचिरात पावे तुम्हें कृष्ण प्रेम धन, हे रघुनाथ तुम तुरंत ही कृष्ण के प्रति जो अनुराग है हृदय में तुम्हारे जाग उठेगा। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि मृगारी जो इतना अधिक पापी था मृगारी जो नारद मुनि को मिला था इलाहाबाद, जो आज प्रयाग है वहां। तो नारद मुनि जा ही रहे थे तो वहां मृगारी मिले। मृगारी को देखा कि वो मृग मीन्स हिरण, हरी मीन्स शत्रु, जिसको मृगारी कहते हैं। तो ऐसा मृगारी को देखा इन्होंने दूर से कि कई सारे प्राणियों की हत्या कर रहा है लेकिन उनको पूरी तरह से मार नहीं रहा है, उनको अधमरा करके छोड़ रहा है। और उसको बहुत आनंद आता था, क्या कहते हैं उसको, आधा मारकर तड़पते हुए मारने में आनंद आता था। तो नारद ने देखा, नारद का हृदय करुणा से भरा था, तो उन्होंने कहा कि ये क्या है। नारद ने जिन जिन पशुओं को स्पर्श किया वो जीवित हो जाता था, वो हैरान हो गया मृगारी। और उन्होंने कहा इतना भयानक पाप कर रहे हो तुम, कहते ये मेरे पिता आदि करते थे जिनसे मैंने सीखा है और इसी पर ही मेरा भरण पोषण होगा। तो नारद ने कहा ये आवश्यकता नहीं है, तुम क्या करो मेरे वचनों का पालन करो। हाँ, सबसे पहले तो उसका जो धनुष बांध था नारद ने कहा इसको तोड़ा और फेंक दो, और वो सरेंडर हो गया वो जो मृगारी है। और नारद का आश्रय लिया और नारद ने उनको बोला नदी तीर एक खानी कुटीर करिया, तार आगे एक पिंडी तुलसी रोपिया। सबसे पहले है मृगारी यहाँ से निकलो, नजदीकी जो नदी है उसके किनारे क्या करो एक कुटीर बनाओ, तुम और तुम्हारी पत्नी क्या रहने के लिए एक छोटा सा स्थान, और उस कुटीर के सामने क्या रखो तुलसी। तुलसी परिक्रमा कर तुलसी सेवान, निरंतर कृष्ण नाम करी कीर्तन। तीन कार्य करो, दो ही कार्य हैं। तुलसी परिक्रमा कर तुलसी सेवान, तुलसी की परिक्रमा करो, तुलसी की सेवा करो, और निरंतर क्या करो
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
इस प्रकार से हम देखते हैं कि जिस भी व्यक्ति ने तुलसी का आश्रय ग्रहण किया है वो व्यक्ति वास्तव में आध्यात्मिक जीवन में सफल हुआ है। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद कहा करते थे unless there is bhakti this tulsi plant will not grow, भक्ति नहीं है तो तुलसी वहां फलेगी या फूलेगी नहीं। प्रभुपाद कहते थे पैरामीटर है डिवोशनल सर्विस का कि जहां तुलसी बहुत अधिक मात्रा में फ्लोरिश हो रही है। तो इस प्रकार से अलग अलग शास्त्रों में तुलसी की महानता का ग्लोरीज का वर्णन आया है। तो मैं कुछ श्लोक पढ़ता हूँ कुछ कुछ शास्त्रों से और फिर थोड़ी देर में हम विराम लेंगे। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरे नित्यम तुलसी त्वाम नमस्ते। ये जो तुलसी महारानी है ये क्या है महाप्रसाद जननी, महाप्रसाद को जन्म देने वाली है। वास्तव में तुलसी नहीं है तो भगवान भी भूखे रह सकते और उनके भक्त भी भूखा ही रहना पड़ेगा। हाँ, तो वास्तव में जो तुलसी है वो महाप्रसाद को जन्म देने वाली है, सारे सौभाग्यों का वर्धन करती है। हाँ, जिस प्रकार से आप देखते हैं कि जब भगवान गोवर्धन के रूप में प्रकट हुए थे और उनको नंद महाराज आदि ने बहुत सारे ये डाले थे, बहुत सारे भोगास ऑफर किए थे, तो भगवान सारे भोगों को खा रहे थे और कह रहे थे अन्य और अन्य और अन्य और लाओ और लाओ और लाओ। तो एक ब्रजवासी था, उसने देखा अरे और लाओ कहाँ से लाओ, लेकिन एक चीज लाता हूं आपके लिए। वो ब्रजवासी ने तुरंत एक तुलसी का वो लिया, पत्र लिया और आगे रख दिया। गिरिराज गोवर्धन ने खाते हुए डकार देना शुरू कर दिया, बस अभी इनफ है। इस प्रकार से तुलसी के द्वारा ही कृष्ण संतुष्टि अनुभव करते हैं। तो यमदूतों को यमराज कहते हैं इस स्थान में यद ग्रहे तुलसी बाति रक्षा बिरजल सेचने तद ग्रहम यमदूतस्य दूरतो वर्जयन्ति। यद ग्रहे तुलसी भाति, जिस घर में तुलसी की बहुत अच्छी रक्षा हो रही है, सेवा हो रही है और रोज निरंतर उसको जल आदि दिया जा रहा है। तुलसी का सेवा का मतलब ही है उसकी केयर करना प्रॉपरली, उसके मंजरी आदि ज्यादा नहीं आने चाहिए। तुलसी महारानी कष्ट अनुभव करती है, पूरी मंजरिया क्या हो जाती है सूख जाती है, उनको बहुत अधिक पीड़ा होती है। तो केवल जिस घर में तुलसी की इस प्रकार से सेवा हो रही है, रक्षा हो रही है, वहां यमदूत दूर से ही उस घर को वर्जन करते हैं, वहां उस घर को त्याग देते हैं, छोड़ते हैं, उस स्थान में नहीं जाते हैं। इसलिए शास्त्र वर्णन करते हैं कि जो तुलसी है, तुलसी का जो पत्र है, चाहे वैष्णव क्यों ना हो, भगवान को अर्पित किए बिना तुलसी की पत्र को व्यक्ति को ग्रहण नहीं करना चाहिए। जैसे श्रील प्रभुपाद को एक बार किसी रिपोर्टर ने पूछा कि आप ये क्या ये तुलसी का लकड़ी क्यों धारण करते हो गले में, तो प्रभुपाद ने कहा कि जिस प्रकार से एक पालतू कुत्ते के गले में बेल्ट होता है, उसका कोई नाथ होता है, उसी प्रकार से हमारा भी नाथ है और हम भी किसके कुत्ते हैं, कृष्ण के कुत्ते हैं। हाँ, तो स्कंद पुराण में यमराज कहते हैं तुलसी अलग कृतये तुलसी नाम जाप का तुलसी वन पालये ते तेज दुरतो भटा भटा में से यमदूतो। यमराज कहते हैं कि तुलसी अलंकृत ये जे, जो तुलसी माला आदि से अपने आप को अलंकृत किया है, तुलसी नाम जाप का, जो तुलसी का गुणगान करते हैं, उनके नामों का उच्चारण करते हैं, तुलसी वन पालये, जो तुलसी को अपने घर आदि में उनका सेवा करते हैं, रक्षा करते हैं, ते तेज दूरतो, वो कहते हैं कि उन व्यक्तियों को दूर से ही त्याग देना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों को मेरे पास मत लाओ। फिर इस प्रकार से तुलसी महारानी का विशेष महत्व है हमारे आध्यात्मिक जीवन में, और जिसका वर्णन शास्त्रों में आया है। और आज तुलसी विवाह है, भगवान ने आज के दिन ही तुलसी से विवाह किया था, और शास्त्र में उनके विशेष रूप से 8 नामों का वर्णन आता है, और वो लीलाएं, उनकी जो कथा है बहुत लंबी है, किस प्रकार से जो तुलसी है, जो आध्यात्मिक जगत में गोपी है, वृंदा नाम की गोपी है, श्रीमती राधिका के अंतरंग सखी हैं, उनको किस प्रकार से इस जगत में आना पड़ा, और उनके पति के रूप में जो शंखचूड है, वो सुदामा नाम के सखा है भगवान के, वो भी इस जगत में आते हैं, और फिर किस प्रकार से भगवान तुलसी महारानी को अप्रोच करते हैं और तुलसी उनको श्राप देती है, पत्थर या स्टोन बनने के लिए शालिग्राम के रूप में वो बनते हैं, और भगवान भी उसको श्राप देते हैं, कहते हैं कि तुम क्या बनोगी, गंगा की नदी, और तुम्हारे जो बाल आदि हैं उसके द्वारा वृक्ष के रूप में पूरे विश्व में तुम पूजे जाओगे। तो वो बहुत ही लंबा विस्तार से वर्णन आता है उन लीलाओं का। तो तुलसी के 8 नामों का मैं वर्णन करता हूँ और फिर हम विराम देते हैं। वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्प सारानंदिनी च तुलसी कृष्ण जीविनी। तो पहला नाम है वृंदा। वृंदा का मतलब है कि जहाँ तुलसी के अनंत वृक्ष निवास करते हैं उसको वृंदा कहा जाता है। वृंदावनी, वृंदावनी का मतलब है कि जो वृंदावन में आपको निवास देने का जिसके पास अधिकार है, सामर्थ्य है, वो वृंदावनी कहलाती है। विश्व पूजिता, जिसकी पूरे विश्व में पूजा हो रही है वो विश्व पूजिता है। विश्व पावनी, जो विश्व को पावन करने वाली है, और आगे है पुष्प सारा, सारे पुष्पों में सार है। शास्त्र कहते हैं कि कोई पुष्प और बार बार ना भी करे तो एक तुलसी दल हम अर्पित करते हैं तो कृष्ण आनंद अनुभव करते हैं। अगला उनका नाम है नंदिनी। नंदिनी मतलब जो भगवान के भक्तों को आनंद देती है। और तुलसी, तुलसी का मतलब है कि अखिल विश्व में जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकता, उसकी समानता बराबरी नहीं कर सकता, उसको तुलसी कहा जाता है। और आखिरी 8वां नाम है कृष्ण जीवनी। कृष्ण जीवनी का मतलब है कि कृष्ण ही जिनके जीवन स्वरूप है। तो इस प्रकार से तुलसी महारानी को हम प्रार्थना कर सकते हैं आज के दिन। और बहुत महत्वपूर्ण है कि कार्तिक का एंड होते होते भगवान ने क्या किया, आखिरी दिन में हमें दो भक्तों का स्मरण करवाया, एक है तुलसी महारानी और दूसरे हैं श्रीपाद निम्बार्क आचार्य। तो हम इनसे प्रार्थना करें अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए। और तुलसी महारानी जय तुम्हारा शरण लय तारा वांछा पूर्ण है, जो उनका सिंसियरली शरण ग्रहण करता है तो तुलसी महारानी को उनके पास वो सामर्थ्य है जो भगवत प्रेम की जो इच्छा है वो पूर्ति कर सकती है। हरे कृष्णा। वृंददेवे तुलसी महारानी की श्रीपाद निपार्कचार्य आविर्भाव तिथि महामहोत्सव के कार्तिक मास के पतित पावन श्री प्रभुपाद के पिता